नहीं है कौन की गुणवत्ता, बस इतना ही। आज से मैं कहूँगा हमारे आचार्य श्री आचार्य श्री है। मैंने बहुत पहले ये चीज कही थी संप्रयास जी में, हमारे महाराज जी तो महाराज जी, जो महाराज जी को होना चाहिए वो सब उनके भीतर है, हम और आप तो सिर्फ महाराज जी का लेबल लगाने वाले लोग हैं कि हम महाराज तो सही बोलते हैं, कोई चार लपेट वाली बात। जो 28 मुल्क का जैसा आज के समय में पालन किया जाता है वो बच्चे जो 36 मुल्क का जैसा पालन किया जाता वो ये हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने बहुत निकट और देखा है उनके भीतर सारे गुण है। एक एक गुण जिनको मैं परीक्षा करना कह लीजिए चाहे कुछ भी, एक एक गुण की परीक्षा करके देख लीजिए, उनके पास उतना ही वास्तव में उतना ही आत्मी का है, उतना ही अनुशासन भी है, जितना बाहर का अनुशासन उतना ही आत्मा अनुशासन है। हमसे कहने से पहले वे उस चीज को कर करके देख लेते हैं, तब हमें डायरेक्शन देते हैं कि ऐसा कर लें। राग द्वेष अपना कम करेंगे तब तो कह पाएंगे कि इन तरीकों से राग द्वेष कम किया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा हर दृष्टि से, चाहे वो ज्ञान हो चाहे वो आचरण हो चाहे श्रद्धा हो, उनके पास तीनों चीजें रत्नत्र जो होना चाहिए एक साधु के पास वो रत्नत्र उनके पास है। और इससे अधिक क्या कहें, उनके बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं हमेशा उन्हीं चीजों से मेरा पूरा जीवन चलता है, पढ़ना तो बहुत मुश्किल होती आज के समय में कम से कम। और ईमानदारी से जीना तो मैं खुद भी कह रहा हूँ कि किसी मार्ग में वो ईमानदारी से जीना बहुत कठिन, बेईमानी से जीने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े हार्ड से लोग जीते हैं। इस मार्ग में भी यही चीज है कि अगर किसी चीज दो टूट बात कर दो तो बहुत मुश्किल होती है, साफ साफ कह दो तो बहुत मुश्किल होती है, किसी को टोक दो तो मुश्किल होता है, पर फिर भी उनके आशीर्वाद से ही सारा कुछ है, उनकी कृपा है, इस वजह से मेरे लिए तो वो मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुना। टेलीपैथी के द्वारा हम आपसे या आचार्य जी से संपर्क साध सकते हैं तो बताइए प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर तो बहुत आसान है कि आप अपनी श्रद्धा मजबूत करिएगा, अपनी भावनाओं को बहुत पवित्र बनाइए। जिसकी जितनी पवित्र भावना होगी, जितना जिसका डिवोशन होगा, वो व्यक्ति जहाँ जैसे चाहे जिसके प्रति होगा उससे वो अपना संपर्क बना लेगा, आधी रात बना सकता है, दिन के आधी रात जगा करके अपना संपर्क बना लेगा कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, और आधी रात जाग करके व्यक्ति को बात करनी पड़ेगी। चली गई क्योंकि मैं अपने प्रयोग की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ हवा में, पर दो चीजें मैंने जो देखी, एक तो सरलता निश्चलता जिसको कहते हैं, जिसके प्रति भी है हम अपना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उसके प्रति हमारी निश्चलता होनी चाहिए, और दूसरे उसके प्रति हमारा समर्पण। ये जितना ज्यादा होगा उतने जल्दी टेली कम्युनिकेशन हो जाएगा, और अन्यथा इसमें देर लगेगी, घंटों भी लग सकते हैं, पूरा जीवन भी इस साधना में लग सकता। और साधना क्या है, बड़ी साधना नहीं है, सरल हो जाइएगा थोड़ी देर के लिए और समर्पित हो जाएगी, आपके समर्पण में थोड़ी सी चोट रहेगी, आपको वहाँ से रिप्लाई जो है गलत गलत मिलेंगे तो आप बड़े मुश्किल पड़ेंगे, कह रहे हम तो एकदम ठीक ठाक है। हर व्यक्ति का मुश्किल ये होती है कि वो ये देखता है कि सामने वाला गलत हो गया है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, तो फिर कोई संवाद नहीं बनता, डायरेक्ट संवाद नहीं बनता, आप खुद ही देखिए टेलीपैथिक तो छोड़िएगा, हमारे और आपके बीच में अगर संवाद बनेगा तो कैसे बनेगा, आपका डिवोशन देखेंगे, आपको झुकते हुए देखेंगे तो मन हार जाएगा, कहेंगे इनके लिए कुछ कर दो और क्या। ये संवाद तब बनता है जब कोई बहुत झुकता है, तो फिर उसको उठाने के लिए आपको भी तो झुकना पड़ता है, लेकिन कोई अगर फ्रॉड करे और झुकने के लिए हमें नीचे झुकाने के लिए कोई झुक रहा हो तो इतना तो सामने वाला भी जानता है गाय के लिए झुक रहा है, तो ये देखने की चार लोगों के सामने की देखेंगे हमें कितना हमारी अप्रोच कितनी है महाराज जी का टावर आपके पास, अगर इसके लिए आए होंगे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, कोई संवाद नहीं हो पाएगा आपका, टेलीपैथिक हो पाएगा और ये सामान्य वाला संवाद, यही चीज ये भी है संपर्क। आपको इतनी ढेर सारी घटनाएं हैं, एक साथ तीन घटनाएं घटित मिलती, मैं चकित रह गया था। कड़ा केशनी बहुत छोटा सा गाँव है सागर के पास में, कड़ा केशनी वहाँ गजरत थे, तो गजरत में हम लोग गए थे, हमारे साथ चंदा सागर जी महाराज समाज जाएंगे, 6-7 पीछियाँ थी उस समय, और भी संघों से आए थे, तो 15-20 साधु जो है विभिन्न संघों के साधु एक साथ जो है वहाँ पर थे। उस समय हम लोग सामायिक में बैठ रहे थे, अचानक 12:15 मेरे लिए स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा वो रीवा वाले क्या हो गई, वैसा स्ट्राइक हुआ, उसके बाद तुरंत स्ट्राइक हुआ कि वो आनंद कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई हमारी उनसे नहीं है। परेशानी हो थोड़ी बहुत, तो भी एक बार ठीक है कि रिश्तेदार रहे पहले कुछ भी नहीं, कोई कोई वो नहीं सेंस नहीं। और मैं उनको बोल दिया, मैंने कहा ये तीनों याद आ गए एकदम, तो मैं सामायिक से बैठ गया। मैं मुझे आशीर्वाद में सामायिक से जैसे उठा और दरवाजा खोल के बाहर निकला तो सबसे पहले उदय चंद जी कोई सोचे कि जब मेरा मन लगेगा तो मंदिर आऊंगा, तो कभी मन नहीं बनने वाला, इतना पुण्य नहीं किया आपने कि जब आपका मन बने। उसी पुण्य के लिए तो आप मन लगा, जबरदस्ती मन लगा रहे हैं, जबरदस्ती मंदिर में आ रहे हैं कि थोड़ा पुण्य तो संचित हो जाए जिससे कि रोज आने लगे। एक दिन का पुण्य संचित होकर के दूसरे दिन आपको मंदिर लाएगा, आपकी पल्ले में है ही नहीं, रोज रोज करेंगे, रोज रोज आपको खाना है। कम से कम इस मामले में तो ऐसा है, धर्म के मामले में, अच्छे विचारों के मामले में। यहाँ आत्माएं अच्छे विचार लेकर के बहुत कम आती हैं, इसलिए संकल्प की शक्ति को पहचानिए और अपने संकल्प के प्रति समर्पित रहिएगा। दो ही चीजें, संकल्प लेना और संकल्प के प्रति समर्पित, और समर्पण अधिक कम होता है तो संकल्प नहीं तोड़ना। मैंने 108 बार नमोकार का संकल्प लिया है, पूरे डिवोशन हो डिवोट होके लिया है, कोई बात नहीं। कल मेरा डिवोशन थोड़ा कम हो गया, मन कहता है कि ना करो, नहीं, लेकिन मैं मन की नहीं मानूंगा, मैं अपने संकल्प पर दृढ़ रहूंगा और करूंगा, एज ए फॉर्मेलिटी भी करूंगा। एक दिन होगा जबकि 20 साल तक भगवान का माथा टेकते रहे, एज ए फॉर्मेलिटी देखते रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन अगर उसी में से किसी दिन वाकई में माथा टेक गया तो 20 साल का हिसाब सब चुकता हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है कि मैं फॉर्मल होके कर रहा हूँ तो क्या मतलब है, नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो मैं पाप करता हूँ उतने क्षणों में मैंने कम से कम वाणी से नहीं किया है, वाणी से नमोकार बोला है, और मैंने अपने शरीर को भी नमोकार में एंगेज करके रखा है, रही मन की, तो मन तो मानता नहीं है, वो आंदो घुमांदो आएगा जाएगा कहाँ, यहीं आएगा, वापस लौट करके आना पड़ेगा, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, ऐसा करके और करते जाइएगा। लेकिन जब कंटिन्यूटी टूटती है तो फिर टाइम लगता है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कंटिन्यूटी टूटती है। अब आप बताइएगा कि बहुत शुक्राइजर जी, तो क्या करिएगा, आप अपने संकल्प को बनाए रखिएगा और कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए मुझे मेरे से जो है मैं आपको एक प्रोसीजर दे दूंगा, आप उस प्रोसीजर से करिएगा। मेरे से टाइम थोड़ा सा आज संडे को नहीं, या संडे को भी शाम को थोड़ा फ्री होगा तो 5 मिनट में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, आप उस प्रक्रिया से करिएगा, नमोकार एकदम कंटिन्यूटी आपकी बन जाएगी। पीछे किस प्रकार ग्रहण की जाती, क्या शर्तें होती हैं, शर्तें तो नहीं, बहुत बेशर्त होती है, सतर्क नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, शर्त सिर्फ इतनी सी होती है कि आप कितने झुके हैं इन दिनों में, एक ही शर्त, वो ले जाएगा जो जितना ज्यादा झुका होगा, क्योंकि जो जितना झुका होगा उसने उतना अपना आचरण पवित्र किया होगा, और मुझे चाहिए है वही व्यक्ति जो जितना आचरण की पवित्रता वाला होगा वो व्यक्ति लूट ले जाएगा वाली बात है, पैसे वैसे तो चलेंगे नहीं यहाँ पर, इतने पैसे की बोली लगा लो, मंगल कलश नहीं है कि 45,000 में खरीद लो तो हम करे ऊर्जा नहीं खरीद सकते आप, इसमें तो चाहे 10 लाख रुपए नहीं तो 1-2 करोड़ रुपया भी खर्च करना चाहो तो कोई छूने भी नहीं देगा आपके लिए। यहाँ तो ये है कि आपने अपनी श्रद्धा से अपने आचरण में कितनी पवित्रता लाई है और आगे आप कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब देख करके प्रतिक्रिया दी जाएगी। विशेष रूप से इसमें ब्रह्मचरी व्रत जो है, और भी अकेले कहीं नहीं करते ना, वही व्रत मंदिर जाएगा, रेडी सब प्रवेशन नहीं करता हो इतना हो, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, आप तो अपना नाम लिखवाइएगा, आ जाएगा अगर लिस्ट में तो आ जाएगा। मुझे तो 3 लोग लेने वाले चाहिए हैं, पुरानी वाली पिछली लेने वाले 3 चाहिए, उनकी क्वालिटी अलग होगी, और नए देने वाले 3 लोग होंगे, मेरे पास अभी ऑलरेडी 15 नाम है, उसमें से मुझे च्वाइस करना है कि किसको देना, जिसका नहीं आ पाएगा तो वो कम नहीं माना जाएगा, पर दूसरा उससे आगे बढ़ गया है बस इतना ही माना जाएगा। तो इसमें तो इस तरह से डिवाइडेशन होगा, जो जितना अधिक आचरण ग्रहण करेगा और आगे भी करता रहेगा पूरे जीवन पर्यंत के लिए है, उसके लिए ये मिले पीसी इत्यादि का आदान प्रदान। तो डिस्कशन होने लगा है, कोई विचार, 15 नाम है अभी मेरे पास, और एग्जैक्ट करिएगा उसमें से जिसका भी नंबर आ जाए उसको, तो नंबर ही होगा इसमें, स्पुट नहीं होगी, फिर उसके बाद जो है हाँ उसमें फिर देखेंगे कि कौन प्रायोरिटी पा रहा है, कौन ज्यादा ले रहा है,
कुछ सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे,
कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, वो मैं वेरीफाई करूंगा, वो दूसरा नहीं करेगा,
और भी नहीं,
और भी अप्रोच का काम नहीं, नोट्स भी नहीं लगेंगे। आदर्श मानवीय मूल्यों की प्राथमिकता क्या है, इनकी प्राथमिकता है, मैं सोचता हूँ व्यसन मुक्त, वो मनुष्य होने लायक है जो व्यसन से मुक्त, जो एडिक्ट नहीं है किसी भी चीज के लिए, जो शराब का एडिक्ट नहीं है, जो मांसाहार नहीं करता है, जो जुआ नहीं खेलता है, जो चोरी नहीं करता है, जो शिकार नहीं खेलता है, जो वेश्यागमन नहीं करता है, जो परिस्थिति पर अपनी आंख खराब नहीं करता है, ये 7 व्यसन का जिस जो उसे मुक्त है वो मनुष्य है। मानवीय जीवन मूल्यों की शुरुआत एकदम मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसको अपन कहेंगे, ये सात चीजों का जिसने त्याग कर दिया है वो मानवीय जीवन मूल्यों का अधिकारी है। उसके बाद तो फिर नैतिक मूल्य शुरू होंगे, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत के लिए प्राथमिकता के लिए बनाया है ये सात नियम, फिर उसके बाद और धीरे धीरे दूसरे के परोपकार की बातें भी आएंगी। पहले तो अपने को सुधार लीजिए ना, पहले बिना अपने को सुधारे आप किसी का उपकार करने कैसे जा रहे हैं? आपके भीतर खुद अपने जीवन के पवित्रता होनी चाहिए तो आप पवित्र हो पाएंगे। अपने अंदर अंधेरा मचा हो दूसरे को रोशनी देकर के कैसे आप दिखाएंगे? आपके भीतर कोई दीपक जल जाए, आप दीपो भाव, आपका दीपक जल गया फिर तो दूसरे लोग अपना दीपक अपने आपसे जलाते जाएंगे। व्यसनी व्यक्ति की बात का कोई प्रभाव नहीं होता है, जो व्यसन में युक्त हो जाता है उसकी कोई भी क्रियाकारीकारी नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। व्यसनी व्यक्ति 100 दफे माथा टेकता हो भगवान के सामने और फिर बाद में सब कुछ करता हो उसका कोई उसका मायने नहीं रखता, कम से कम मनुष्य होने की इतनी चीजें तो है। जीवन में मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना किस प्रकार की जाए? यदि कोई व्यक्ति पद भ्रमित हो चुका है उसे समझाया जाए, उसे प्यार दिया जाए, दो ही चीज, और वो भी पहले समझाया नहीं जाए, पहले उसे दुलार किया जाए। वो तो इंतजार में है कि कोई पुकार ले, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार के दुलार लो, दुलार के सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। बच्चन की चार लाइन में याद रखिएगा। मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी कमजोरी किसी के अंदर है आप उसे सहारा दीजिएगा, पहले उसका विश्वास दीजिएगा कि आप जो कहेंगे आप उसके हित में कहेंगे। उसके लिए पीड़ित तो होइएगा कि ये क्यों है ऐसा, मेरा मित्र है तो ऐसा कैसा क्यों बिगड़ गया है, उसके पहले नंबर तो आपको गुलार ही देना पड़ेगा। फिर भी देखिए वो सुधरेगा, इस जन्म में नहीं सुधर पाएगा तो अगले जन्म में। इतना पेशेंस होना चाहिए, तीसरी चीज ये भी बहुत पेशेंस होना चाहिए, हम धैर्य रखेंगे कि देखेंगे कैसे नहीं होता है, हमारी जीत होगी, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। तो ऐसे जो है पुनर्स्थापना जीवन मूल्यों की हो सकती, और अपने से शुरू करना पड़ेगा। चैरिटी विगन सेट होम अपने घर से शुरू करना पड़ेगा, अपने आसपास से शुरू करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हम विस्तार पाएंगे उसको। ये तो मेरा संकल्प है जीवन के मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना। इसके लिए जो है सबसे पहले वहाँ शुरुआत की थी छतरपुर में 93 में, उसके बाद से धीरे धीरे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के मूड में हूँ। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हों उनको वेलकम कर रहा हूँ। एक ऐसा स्टेज बनाएंगे जिस स्टेज पर कोई ये नहीं कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कि जैन हूँ या कि माउंटन हूँ। आई एम ह्यूमन, यू आर ऑल्सो, मैं आदमी हूँ, क्या आप भी हैं? वेलकम, आइएगा। एक आदमी की हैसियत से हर आदमी वहाँ पर चढ़ेगा, ये इससे नहीं चढ़ेगा कि रईस आदमी है कि गरीब आदमी है कि जैन है कि जैन नहीं है, बस एक सामान्य आदमी की हैसियत जिसके भीतर आदमी होने के सारे गुण मौजूद होंगे वो एक दिन मंच पर खड़ा होगा और किसी की उस पर वो नहीं होगी मंच पर आने की हिम्मत। मैं सोच तो ये रहा हूँ कि तब हमारे ऐसे 50 लोग लगभग हो जाए, हो रहे धीरे धीरे, हर जगह से 2-4 लोग तो होते ही हैं जो इनमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो फिर देखेंगे एक आध दिन अपन इस चीज के बारे में कि फैलाएंगे इसको। अभी आपके विपिन जी और ये आए थे तो उनका कितना बड़ा इसको था कि मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए आप जो लोग आपके पास आते हैं सरकार के लोग उनसे कहिए, तो वाकई में देश के विकास के लिए और बहुत सारी चीजें बनाने की आवश्यकता नहीं, फॉरेन करेंसी जरूरत नहीं, हमारे देश की जो संस्कृति है जो मिट रही है निरंतर उसके उत्थान के लिए कुछ करना आवश्यक है। जो रिवॉल्यूशन कहलाता है जिसको, तो कौन सा रिवॉल्यूशन होगा? रिवॉल्यूशन होगा मॉरलिटी का रिवॉल्यूशन, मॉरल रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है और दूसरे रिवॉल्यूशन की। महाभारत में गांधारी की आकांक्षा उसको विजयी देखने की थी, युधिष्ठिर सहित पांडवों को या दुर्योधन सहित कौरवों। गांधारी तो ने तो जान बूझ करके आँख पर पट्टी बांधी, पट्टी नहीं बांधी कायदे से, मोह ने धृतराष्ट्र को अंधा किया था तो धृतराष्ट्र के राग ने जो है गांधारी को जान बूझ करके अंधा बना दिया था। अपने बेटे के अवगुण नहीं दिखाई पड़ते थे, सब गुण ही गुण दिखाई पड़ते थे दुर्योधन के, तो गांधारी तो दुर्योधन का समर्थन करती थी। दुर्योधन और कोच कुछ नहीं, हमारी आसुरी शक्तियां हैं और हमारे भीतर जो पांडव हैं वो हमारी अपनी दैवीय शक्तियां हैं। लड़ाई उन दोनों के बीच में हमेशा होती है और जीतती कौन है? दैवी शक्ति जीतती, आसुरी शक्ति कभी नहीं जीतती, वो प्रतीक है ये सारी की सारी लड़ाई। अगर महाभारत की देखें, माम कहा पांडवा पुत्रहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्या कर रहे हैं संजय मुझे बताओ, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में धर्म हृदय, और कभी सोच देखिएगा उसमें एकदम शरीरम कौनते है क्षेत्रम, ये शरीर ही कौनते क्षेत्र है, लड़ाई यही होनी है, वो कोई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं। जब आसुरी शक्तियां भारी होती हैं तब वही कुरुक्षेत्र हो जाता, जब मैं कर्म में प्रवृत्त होता हूँ तब कुरुक्षेत्र होता, जब मैं धर्म में प्रवृत्त होता हूँ तो यही शरीर मेरा धर्म क्षेत्र हो जाता, इस धर्म क्षेत्र यही कुरुक्षेत्र यही धर्म क्षेत्र है, यहीं पर मुझे लड़ाई करनी है। ये सारा का सारा जो सब प्रतीकात्मक था उसको ऐसे मानिएगा। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं जानता हूँ कहाँ गलत हूँ, फिर भी मन पर नियंत्रण नहीं रखने से गलती सुधार नहीं पाता। इसका निराकरण मैं आपको बताऊंगा, इसकी प्रक्रिया बताऊंगा। अलग से ये तो सामान्य रूप से क्योंकि हर एक का प्रश्न ही एकदम व्यक्तिगत प्रश्न है। व्यक्ति एक सामान्य प्रश्न ये बन सकता है कि व्यक्ति अपनी कमजोरियाँ जानता है लेकिन उनसे मुक्त नहीं, ये तो लिखा ही हुआ है। वो क्यों नहीं हो पाता है? उसके अपने मोह की वजह से, उसके अपने ग्रंथि की वजह से। उसे ये लगता है कि हर आदमी को लगता हमारे मन में कोई गलत चीज डोल जाए तो हम कहने से कहाँ एकदम कहते कहाँ है। अगर हम किसी को गाली देने का मन हो तो हम क्या कहेंगे? कह देंगे कि हमारे मन में आ रहा है कि आपको गाली दे रहे हैं, अच्छा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। कोई व्यक्ति भी होगा कैसे कह सकता है? तो अपनी कमजोरी कोई व्यक्ति दूसरे से नहीं बताता। क्यों? उसे ऐसा लगता मेरी रेपुटेशन कम ना हो जाए, जबकि वो ये नहीं सोचता है कि मेरी रेपुटेशन तो ठीक ही है, मेरा ईमान तो खत्म हो रहा है। अगर वो उस समय ये सोच ले कि अगर मैं गलत हूँ तो दूसरे भले ही अच्छा कहते रहे लेकिन मैं तो गलत ही हूँ, मुझे स्वीकार करने में क्या दिक्कत। तो पहली स्थिति में आपसे कहूँ कि कन्फेशन, पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं गलत हूँ। अपनी कमजोरियों को जो स्वीकार कर लेता है और दूसरे के सामने ठाट से कह सके कि मैं यहाँ कमजोर हूँ, उस कमजोरी को मैं दूर करना चाहता हूँ, तो वो धीरे धीरे फिर कमजोरी, अब जिसको फोड़ा हो गया है और वो दर्द की वजह से डॉक्टर के हाथ में ना दे तो कैसे ठीक होगा? उसको ढके रहेगा, वो पट्टी बांधता रहेगा, ना उसको छुआ ही नहीं दे रहा कि बहुत दर्द होता है उससे, नहीं तो आपको उसको साफ तो करवाना पड़ेगा। आपके भीतर कोई गड़बड़ी है तो हाथ पे डॉक्टर के सौंपना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको समर्पित करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट आपको दे रहा हूँ, पहले कन्फेस करना पड़ेगा खुद, फिर दूसरे किसी विश्वस्त व्यक्ति के सामने उसको कन्फेस करना पड़ेगा। अगर वो कहे कि सबके सामने कन्फेस करो तो सबके सामने भी कन्फेस करना पड़ेगा, फिर देखिएगा कैसे आप दोस्त से मुक्त नहीं होते हैं। तो क्रमशः ये किया जा सकता है, सामान्य रूप से तो प्रक्रिया दे रहा हूँ, पर मैं पहले देखूंगा कि आपके अंदर कौन सी कमजोरी है और उस कमजोरी का क्या निकालने का ढंग हो सकता है। वो अलग चीज़ है, हाउ टू मेंटेन द रेगुलरिटी। रेगुलरिटी बनाने के लिए यही है कि जो जिस चीज़ में हम रेगुलर होना चाह रहे हैं, मंदिर जाने में रेगुलर होना चाह रहे हैं या पढ़ने में रेगुलर होना चाह रहे हैं, चोरी करने में रेगुलर होना चाह रहे हैं, तो फिर जरा मेरे से मत पूछिए। मैं तो अच्छी चीज़ के लिए रेगुलर होना चाह रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ, नहीं तो आप कहें कि पाप करने में रेगुलरिटी आ जाए तो वो गड़बड़ मामला है। मैं इसी दृष्टि से बताऊंगा कि आप अच्छी चीज़ों में रेगुलर हों तो उन अच्छी चीज़ों में आप पहले अपना इंटरेस्ट क्रिएट करिएगा, इंटरेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद कंटिन्यूटी और उसमें निरंतरता बनाए रखिए। बनाने के लिए संकल्पित होइए, अभ्यास करने के लिए संकल्प कीजिए, और जो चीजें अभ्यास में बाधक होती हैं, जो हमारे संकल्प में बाधक होती हैं, तीन चीजें, रुचि, अभ्यास और विरक्ति। यानी रुचि हमारा अभ्यास का संकल्प, और फिर जो संकल्प में बाधक है उनसे विरक्ति। ये तीन चीजें आप लाएं तो रेगुलरिटी आना शुरू होगी। दुकान पर लोग अगरबत्ती जलाते हैं, टाइम आपका हो जाए, आपकी पुस्तक ले जाते। कल ही मैंने बड़े जल्दी जल्दी में आपके साथ अन्याय किया था, मेरे साथ मैं अब कल अच्छे से करूँगा, कल नहीं लिखना पड़ेगा। दुकान पर अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका क्या कारण है, क्या उचित है? हमारी भावना का प्रतीक है और उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगरबत्ती थोड़ी सी गंदी चीज हो रही है, उसको ठीक नहीं बना रहे तो उससे बचिएगा, कोई और चीज उसके साथ में जोड़िए जो पवित्र हो तो अच्छा रहे। यदि कोई आपका सच्चे मन से स्मरण करे तो क्या आपको आवाज होता है? अभी तक ऐसा हुआ है, अब इसके बाद ना हो तो नहीं कह सकता, अभी तक ऐसा हुआ है। वो देवता जो मेरे भीतर रहा उसकी कब्जा, मेरे पास संडे का ही दिन रहता है, निवेदन करने से अस्वीकार मत करिएगा, क्योंकि एक ही दिन मेरे पास है। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं दो मिनट में वो चीज आपको सुनाई देता हूँ। ये क्वेश्चन और आ गए, क्वेश्चन को मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जो है जिनके भी हैं वो क्षमा करें, मैं फिर बाद में कर सकता। जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा, आचार्य श्री के लिए मैंने ये कविता समर्पित की थी, वो आपको सुना देता हूँ। जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो सांस बन मेरे हृदय में आता रहा जाता रहा वो देवता। मैंने ईश्वर उसे माना है जो मेरे जीवन में ज्योति की तरह, हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो सांस बन मेरे हृदय में आता रहा जाता रहा वो देवता, जिसका मिलन मेरे हृदय में विराग का कोई अनोखा गीत बन बसता रहा वो देवता, जिसने मुझे विरक्ति सिखाई। मैं बंधा जिससे मुझे जो मुक्ति का संदेश नव देता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो मूर्ति में कई रूप धरता पर अरूपी ही रहा वो देवता, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा वो देवता, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा वो देवता। मैं जागता हूँ सो गया या मैं जागता हूँ सो के आया ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वो मैं जागता हूँ सो के आया ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वो देवता जो गति था मेरी नियति था कि मुझसा ही मुझे करता रहा वो देवता जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशन करता रहा। मैत्री